अगले दिन सबकी नज़र 11 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी थी। कॉन्फ्रेंस में त्यागी जी मुख्यमंत्री पद के लिए राघवेंद्र और यशवर्धन का नाम अनाउंस करने वाले थे। इतने दिनों पर लगातार काम पर होने की वजह से प्रतीक ने वैदेही को 2 दिन की छुट्टी दी थी। नरगिस के ऑफिस जाने के बाद वैदेही उठी और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज इतने दिनों बाद अच्छा महसूस हो रहा है, वैदेही सैंडविच बनाते हुए खुद से बातें कर रही थी। ऑल्दो ये कुकिंग, छुट्टियां, तैयार होकर सेल्फी क्लिक करना, ये सब मेरे टाइप के काम नहीं है, लेकिन आज ये सब करने का मन कर रहा है। फाइनली मैंने राघवेंद्र को मुख्यमंत्री बनने से रोक ही लिया। भले ही महाराष्ट्र विकास पार्टी की तरफ से राघवेंद्र का नाम अनाउंस हो जाए, लेकिन आज शाम आने वाले प्राइम टाइम शो के दौरान मैं जो खुलासे करूंगी, उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाएगा। ब्रेकफास्ट बनने के बाद वैदेही अपने कमरे में गई और उसने खुद को आईने में देखा। उसने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखी थी और बालों को जुड़े के रूप में बांध रखा था। क्यों ना आज दिन को थोड़ा अलग तरीके से बिताया जाए, खूबसूरत से दिन की खूबसूरत से शुरुआत, वैदेही मुस्कुराकर बोली। इसके बाद वो अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ी और उसमें से अपने लिए सफ़ेद कलर का सिंपल सा सूट निकाला। उसके साथ उसने रेड कलर का दुपट्टा दिया और चेंज करने के लिए बाथरूम में गई। हैप्पी बर्थडे वैदेही रघुवंशी, वैदेही ने मुस्कुराते हुए आईने में देखा और खुद को बर्थडे विश किया। उसने दुपट्टा लगाया और कानों में झुमके पहन रही थी, जिनके डिज़ाइन से वो पुराने ज़माने के लग रहे थे। तैयार होने के बाद में वैदेही ने खुद को फिर से आईने में देखा। उसकी आंखें नम थी। आई नो आज के हिसाब से ये कपड़े और ये दिन दोनों ही आउटडेटेड हो गए हैं। आपके कपड़े पहनकर हमेशा खुद को अपने करीब महसूस करती हूँ मम्मा। मुझे पता है कि आप मुझे बर्थडे विश करने नहीं आएंगी, लेकिन आपके कपड़े पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया हो। वैदेही की आंखों में कैद आंसू बाहर लुढ़क गए। आज उसका बर्थडे था और इस वजह से खासकर उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। मैं आपके जितनी अच्छी कुकिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी तरह सैंडविच का केक बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। वैदेही आंखों में आंसू लेकर भी मुस्कुरा रही थी। ओ माय गॉड, सैंडविचेस को तो मैं भूल ही गई थी, कहीं जल ना जाए। उसने खुद को संभाला और दौड़कर किचन में गई। उसने जल्दी से टोस्टर में से सैंडविचेस को निकाला और उन्हें एक साथ मिलाकर रख दिया। उसके बाद उसने केचप का बोतल लिया और उसे सैंडविच पर कुछ लिखने लगी। हैप्पी बर्थडे वैदेही, वैदेही ने केक पर लिखा। वो किचन में थी तभी उनके घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने पानी पिया और खुद को नॉर्मल किया। ज़रूर देव आया होगा, इस लड़के को छुट्टी के दिन भी आराम नहीं, इसे मेरी जान खानी होती है, बड़बड़ाते हुए वैदेही दरवाज़ा खोलने गई। सामने देव के बजाय यशवर्धन था। वैदेही को देखकर उसकी नज़रें उसी पर ठहर गईं। आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं वैदेही जी, बोलते हुए वो अंदर आया। थैंक्स, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आ रहे थे, अचानक उसे वहाँ देखकर वैदेही ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे बता देना चाहिए था, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, वैदेही ने नामे सिर हिलाया। प्रतीक जी ने कहा था कि आज आपने छुट्टी ली है, आपको देखकर लग नहीं रहा था कि आप अपनी छुट्टी सोकर बिता कर रही थी, कहीं जा रही थी क्या, यशवर्धन एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। नहीं, बस ऐसे ही आज तैयार होने का मन किया तो, वैदेही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है, और ये झुमके, इसके डिज़ाइन देखकर लग रहा है कि ज़रूर ये आपकी माँ के होंगे, वैदेही ने हामे सिर हिलाया। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ किस वजह से आए थे, उसने पूछा। बस आपसे ही मिलने आए थे, मेहुल वर्मा ने आपको ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी भेजी थी, आपको मिल गई होगी ना। जी, मैंने ओरिजिनल कॉपी संभाल कर रखी है, आज शाम आने वाले प्राइम शो में सबसे पहले उसी का जिक्र होगा। वैदेही के मुँह से प्राइम शो का नाम सुनकर यशवर्धन चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, हम सब कुछ पुलिस पर छोड़ते हैं ना, और इसकी वजह, आपने उनके खिलाफ सबूत ढूंढ तो लिए हैं, फिर शो करने की क्या ज़रूरत है, अगर आप इस तरह का कोई शो करेंगी तो आपका नाम सामने आ जाएगा और उनके गुंडे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम आपको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते वैदेही, यशवर्धन ने पूरी बात उसके सामने रख दी। लेकिन ये तो मेरा काम है, पहले की बात और थी, अब सब कुछ बदल गया है, यशवर्धन ने जवाब दिया। और पहले और अब में क्या फ़र्क आ गया है, आप सब कुछ जानकर भी कितने अच्छे से अनजान बन जाती हैं, जैसे आप नहीं जानती कि अब क्या बदल गया है, हमने बताया था आपको, वैदेही हम आपसे प्यार करते हैं, बोलते हुए यशवर्धन ने वैदेही का हाथ पकड़ लिया। यश, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, उसके बाद हम इस बारे में भी बात करेंगे, वैदेही ने पलकें झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया। यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ये पहली बार था जब वैदेही की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। आपके मुँह से यश सुनकर अच्छा लगा वैदेही, यशवर्धन ने उसी अंदाज में जवाब दिया। और तुम मेरी फिक्र मत करो, ट्रस्ट मी, एक बार राघवेंद्र जेल के पीछे चला गया तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, वैदेही ने उसके हाथ को सहलाकर कहा। यशवर्धन ने उसकी बात पर हामी भरी। वैदेही ने अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर लिया। ब्रेकफास्ट किया तुमने, उसने पूछा। आपसे मिलने की जल्दी में नाश्ता करना तो दूर, हमें तो चाय पीने का भी ख्याल नहीं रहा। काश मैं तुम्हें ये बोल सकती कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी चाय बनाना नहीं आता है, वैदेही ने हंसकर जवाब दिया। लेकिन हमें बखूबी आता है, लगता है आप अभी तक चाय के नशे से दूर हैं। डोंट वरी, हम अपने लिए चाय बना लेंगे। आप बताइए कि आप क्या खाना पसंद करेंगी,
बोलते हुए यशवर्धन किचन की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा किचन प्लेटफॉर्म पर सैंडविचेस को जोड़कर एक केक बनाकर रखा था, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे वैदेही ही लिखा था। उसे पढ़ने के बाद यशवर्धन वैदेही जी तरफ मुड़ा और बोला, डोंट टेल मी कि आज आपका बर्थडे है। ऑफकोर्स, वैदेही ने हामी भरी। हे ईश्वर, हम इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकते हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इम्पोर्टेंट दिन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैंने अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रखी है। फिर तो अच्छा हुआ ना कि हम बिना कॉल किए यहाँ आ गए। अगर हम आपको बताते तो कभी पता नहीं चल पाता कि आज आपका बर्थडे है। चलिए ना मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, यशवर्धन ने प्रस्ताव रखा। आइडिया अच्छा है, लेकिन कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आई थिंक आपका वहाँ होना जरूरी होगा। फिलहाल के लिए हम इसे सिंपल तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपने केक तो बना ही रखा है, बाकी पार्टी पेंडिंग रही। बोलते हुए यशवर्धन ने वो केक उठाया और वैदेही का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। उसने उस केक को काउच के सामने रखी टेबल पर रखा और वैदेही की तरफ देखकर पूछा, कैंडल मिलेगी? वैदेही ने नामे सिर हिला दिया। माचिस? इस बार वैदेही ने हामे सिर हिलाया और किचन से माचिस लेकर आई। यशवर्धन ने वैदेही के सामने माचिस की तीली जलाई और कहा, इससे पहले कि हमारा हाथ जले, अब जल्दी से कोई विश मांगकर इसे बुझा दीजिए। वैदेही ने अपनी आंख बंद की और मन में कहा, थैंक यू गॉड, इतने सालों में पहली बार मेरे बर्थडे पर मुझे खुशी हो रही है, प्लीज मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। और वैदेही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले यशवर्धन बोला, जल्दी कीजिए वैदेही जी, बाकी की विशेष बाद में मांग लीजिएगा या हमें बता दीजिएगा, हम पूरी कर देंगे। वैदेही ने अपनी आंख खोलकर जल्दी से तीली को बुझाया। यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वैदेही को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सैंडविच का एक टुकड़ा उठाया और वैदेही को खिलाकर उसे बर्थडे विश किया।
थैंक यू सो मच यश, मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। हाँ, कभी सेलिब्रेट करने का मन भी होता तो सबसे अलग छुपकर इस तरह सैंडविच का केक बनाकर अकेले बर्थडे मनाती थी। आज तुम्हारे साथ, वैदेही बोल रही थी तभी यशवर्धन ने उसके होठों पर अंगुली रखी और कहा, श, आगे कुछ मत बोलना, ये तो बस एक छोटी सी खुशी है। तो मुझे मौका तो दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दूंगा। जवाब में वैदेही मुस्कुराई। यशवर्धन ने हल्के से उसके माथे पर किस किया और उसे गले लगा लिया। वैदेही के लिए ये सब कुछ नया और पहली बार था, लेकिन फिर भी उसे यशवर्धन के साथ काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी देर यूं ही गले लगने के बाद यशवर्धन उससे अलग होकर कहा, वैदेही, अगर आप बुरा ना मानो तो हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? हाँ, बोलो। एक्चुअली हम आपके पास इसी रीज़न की वजह से आए थे। हम चाहते थे कि हम उन सबूतों को संभाल कर रखते। हमें आप पर पूरा यकीन है, लेकिन राघवेंद्र और त्यागी जी को तुम नहीं जानती। उन्हें तुम पर पूरा शक है। मैंने उन्हें बात करते सुना था और वो तुम पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। हाँ, उनके आदमी एनी टाइम अपार्टमेंट के नीचे तैनात रहते हैं, वैदेही ने जवाब दिया। ऐसे में वो आपको शो के लिए बाहर नहीं निकलने देंगे। हम जानते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप उन सबूतों को हमें दे दीजिए। शाम को मैं देसाई जी को बोलकर गाड़ी भिजवा दूंगा। तुम चैनल पहुँचेगी तब तुम्हें सबूत मिल जाएंगे, यशवर्धन ने उसे अपना प्लान समझाया। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में अलमारी के अंदर एक सेफ बनाई हुई थी जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वैदेही ने उसके अंदर से कुछ टेप्स और डॉक्यूमेंट्स निकाले जो उसने सुंदरी की हवेली में और बाकी समय पर रिकॉर्ड किए थे। उसने डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में असेंबल किया। उसने बाहर आकर वो टेप्स और फाइल यशवर्धन को थमा दिए। तुम भी अपना ख्याल रखना, वैदेही ने कहा। थैंक्स कि आपने हम पर विश्वास किया, यशवर्धन उसके कंधे को सहलाकर कहा और फिर उन चीज़ों को लेकर वहां से निकल गया। यशवर्धन वहां से महाराष्ट्र विकास पार्टी के ऑफिस पहुंचा, जहां पर कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। बाकी के नेता और पार्टी के सदस्य आ चुके थे। राघवेंद्र भी वहीं पर मौजूद था। यशवर्धन के चेहरे पर विजयी मुस्कुराहट थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले त्यागी जी बाकी लोगों से बात कर रहे थे। तभी यशवर्धन राघवेंद्र के पास जाकर बोला, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी राघव। क्या बात करनी है यशवर्धन? थोड़ी देर बाद में मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों फिर से कोई लड़ाई या बहस करो और यहाँ पर तमाशा हो, त्यागी जी ने कहा। हमारी बातचीत के बाद बहस या लड़ाई जैसी कोई बात होगी ही नहीं, यशवर्धन ने कहा और एक कमरे की तरफ जाने लगा। त्यागी जी ने राघवेंद्र को उसके पीछे जाने का इशारा किया। उनकी बात मानते हुए राघवेंद्र यशवर्धन से बात करने के लिए उस कमरे में प्रवेश कर चुका था।